मैं सचिन कुमार हिस्ट्री पेपर नंबर 9 का रिकॉर्डिंग शुरू करने जा रहा हूँ। पेपर नंबर 9 के अंतर्गत मैं पूर्वी प्रस्थ नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। ईस्टर्न क्वेश्चन बिटवीन 1815 टू 1856। सर्वप्रथम इस अध्याय का परिचय हो जाए। पूर्वी प्रश्न से हमारा तात्पर्य डैन्यूब नदी से लेकर नील नदी तक के भूभाग तथा उसमें बसने वाले निवासियों की समस्या से है। पूर्वी प्रश्न एवं सुदूर पूर्व की समस्या में अंतर है। सुदूर पूर्व की समस्या का उत्थान 19वीं सदी में चीन तथा जापान के उत्थान के कारण हुआ। सुदूर पूर्व का यूरोप की सभ्यता एवं संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। मध्य युग में पूर्वी यूरोप का बहुत बड़ा भाग तुर्की साम्राज्य की अधीनता में था। 1453 में मोहम्मद द्वितीय ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया। तुर्कों की जीत के परिणाम स्वरूप यहां पर तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। कुछ ही समय में तुर्कों का साम्राज्य जर्मनी को छूने लगा और इसके पश्चात तुर्कों का लक्ष्य ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। इस परिस्थिति से निपटने के लिए 1648 में ऑस्ट्रिया, पोलैंड और वेनिस ने मिलकर एक संधि की। कुछ समय पश्चात ही इन तीन सम्राटों की संधि में रूस का सम्राट पीटर महान भी सम्मिलित हो गया। इन चार शक्तियों के एक होने से तुर्कों का मार्ग यूरोप में अवरुद्ध हो गया। 18वीं शताब्दी में तुर्कों की शक्ति घटने लगी और बाल्कन राज्यों का उदय हुआ। रूस तथा ऑस्ट्रिया तुर्की को समाप्त करना चाहते थे। केंद्रीय शासन कमजोर होने लगा था तथा एल्जियर्स एवं ट्यूनिस स्वतंत्र हो गए थे। मिस्र के पाशा मोहम्मद अली ने विद्रोह कर दिया। यूरोप के सभी तुर्की प्रांतों में एक के बाद एक विद्रोह हो रहे थे। तुर्की साम्राज्य की स्थिति। पूर्वी प्रश्न का यूरोप के राजनीतिक मंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। 18वीं सदी से ही तुर्क बराबर यूरोप में बढ़ते जा रहे थे और यूरोप के राजनीतिज्ञ तुर्की की इस बराबर बाढ़ से अत्यंत परेशान थे। ऑस्ट्रिया एवं रूस तथा अन्य यूरोप की शक्तियों ने बहुत प्रयत्न किए, किंतु वे ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना को नहीं रोक पाए। ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना से यूरोप की शक्तियों की कमजोरी साफ साफ नजर आ रही थी। ऑटोमन साम्राज्य की चिंता के अन्य कारणों के साथ ही दो पासा भी थे, जिसमें से एक अल्बानिया में व दूसरा मिस्र में अपनी शक्तियां दिन पर दिन बढ़ा रहे थे। किंतु साम्राज्य की चिंता का मुख्य कारण जाति व धर्म था। जो भी साम्राज्य शक्ति पर आधारित होता है वह सैन्य शक्ति निर्बल होने पर स्वतः ही समाप्त होने लगता है। यही घटना ऑटोमन साम्राज्य के साथ भी घट रही थी। ऑटोमन साम्राज्य में दो वर्ग थे, मुसलमान एवं ईसाई। इन दोनों वर्गों में मेलजोल न था और शासक वर्ग अपनी प्रजा में रहते भी अपनी प्रजा से बहुत दूर रह रहा था। यही कारण था कि जब बाल्कन राज्य का उत्थान आरंभ हुआ तो साम्राज्य इस उत्थान को रोकने में सफल ना हो पाया और एक बार को बाल्कन राज्यों ने यूरोप के राजनीतिज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया। 1815 में नेपोलियन के पतन के समय टर्की साम्राज्य यूरोप में रूस के बाद सबसे बड़ा था। इसमें विभिन्न धर्मों व भाषाओं के निवासी निवास करते थे। एशियन तुर्की में मुसलमानों व अरबों का बहुमत था एवं ईसाई जगत का अल्पमत। प्रोफेसर शैपीरो के अनुसार निकट पूर्व का प्रश्न मुख्यतः बाल्कन प्रायद्वीप के निवासियों से संबंधित था। शताब्दियों से यह इलाका यूरोप के लिए खतरनाक था और वहां के निवासियों के भाग्य का निर्णय करने के लिए बहुत से युद्ध लड़े जा चुके थे। द नियर ईस्टर्न क्वेश्चन कंसर्न इटसेल्फ मेनली विद द इनहेबिटेंट्स ऑफ द बाल्कन पेनिनसुला। For centuries, this region was the danger zone of Europe, and many wars were fought to determine the fate of its inhabitants. यूरोप में और किसी भी भाग में इतने छोटे क्षेत्रफल में इतनी अधिक जातियां न थी जितनी कि टर्की साम्राज्य में थी। ये जातियां भाषा, सभ्यता एवं धर्म आदि सब दृष्टियों में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी और तुर्कों के साथ तो इनकी किसी भी क्षेत्र में समानता न थी। इन जातियों में मुख्य जातियां अल्बानियन, तुर्क, ग्रीक, बल्गर एवं रोमानियन थी। अल्बानिया ग्रीस के उत्तर परिवार में रहते थे। वह इनकी संख्या 15 लाख थी। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था एवं सभ्यता की दौड़ में वे यूरोप से काफी पीछे थे। ग्रीक सभ्य जाति थी, ये लोग शहरों में रहते थे, वह व्यापार के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। जब 19वीं सदी में राष्ट्रीयता की आम लहर दौड़ी तो ये लोग भी उससे अछूते न बचे। रोमानियन जाति मोल्डेवीय, वेनेसिया व ट्रांसिल्वेनिया में निवास करती थी। सभ्यता के दृष्टिकोण से भी ये समय के काफी पीछे थे। स्लाव लोग संख्या में बहुत अधिक थे एवं यूरोप के सारी स्लाव जाति में एकता विद्यमान थी। ये लोग बराबर अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे व अन्य स्लाव इनकी पूरी सहायता कर रहे थे। बल्गेरिया के निवासियों को बल्गर के नाम से पुकारा जाता था। तुर्क पूरे बाल्कन प्रायद्वीप में बसे हुए थे। ये लोग शासक वर्ग से थे, अतः शासितों को हीन दृष्टि से देखते थे। यदि अन्य कोई धर्मावलंबी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता था तो ये लोग उसे अपनी जाति में सम्मिलित कर लेते थे और उनके साथ समानता का व्यवहार करते थे। तुर्की में इन समस्याओं के अलावा स्वयं मुसलमानों में कई संप्रदाय थे। इनमें सिया व सुन्नी मुख्य थे और ये दोनों समुदाय एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। 18वीं सदी तक तो किसी न किसी प्रकार ढर्रा चलता रहा, किंतु जैसे ही राष्ट्रीयता की भावना का उत्थान हुआ तुर्की साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। तुर्की साम्राज्य की आंतरिक दशा भी बड़ी शोचनीय थी। साम्राज्य में कानून का कोई महत्व नहीं था। राजकीय पदों पर नियुक्तियां योग्यता के बल पर नहीं होती थी, बल्कि पदों को नीलाम किया जाता था और जो सबसे अधिक बोली लगाकर पद खरीदता था वह उसका अधिकारी हो जाता था। ऐसे पदाधिकारियों से सुयोग्य शासन की आशा नहीं की जा सकती थी। ये पदाधिकारी अपने पद पर पैसा कमाते थे। तुर्की साम्राज्य की हालत इतनी गुर चुकी थी कि सरकार भी उसे सुधारने में असमर्थ थी। सलीम तृतीय एवं महमूद द्वितीय ने तुर्की के शासन को भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोशिश में कोई कसर न उठा रखी, किंतु साम्राज्य की व्यवस्था उठने के स्थान पर गिरती चली गई। तुर्की साम्राज्य की दशा एक उस सुंदर सेब जैसी हो गई थी जो ऊपर से तो बहुत सुंदर था किंतु उसका गुदा सड़ चुका था। यह साम्राज्य समय आने पर ताश के पत्तों की दीवार की भांति ढह गया, एक ऐसी दीवार की भांति जिसके नींवें बालू की रेत की जमीन पर भरी गई थी और जिसे ढहने के लिए किसी बड़े तूफान की आवश्यकता न थी, बल्कि एक तेज हवा का झोंका ही काफी था। बाल्कन राज्यों का उदय। फ्रांस की क्रांति एवं नेपोलियन की हार ने यूरोप को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया था। यह राष्ट्रीयता की भावना भी बाल्कन प्रायद्वीप में असर कर रही थी। चूंकि बाल्कन प्रदेश पहाड़ियों से घिरा है, अतः तुर्की साम्राज्य के लिए इस प्रदेश को सदैव काबू में रखना असंभव था। इधर रूस भी बाल्कन प्रायद्वीप पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। ऑस्ट्रिया का जर्मनी से प्रभाव घट रहा था, अतः उसे भी अपने प्रभुत्व का उपयुक्त स्थान बाल्कन प्रायद्वीप ही जान पड़ता था। क्रीमिया के युद्ध के बाद रूस की सीमाएं काले सागर को छू रही थी एवं रूस के लिए अब कमजोर टर्की साम्राज्य बहुत महत्व का बन गया था। इधर तुर्की शासन बाल्कन प्रायद्वीप के विभिन्न जातियों को अपने आप में पूर्ण रूप से नहीं मिला पा रहा था, अतः अब इस साम्राज्य के लिए विभिन्न भागों में क्रांति की भावना जोर पकड़ती जा रही थी। तुर्की राज्य का विद्रोह। तुर्की कुशासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाली पहली जाति सर्ब थी। जननेता कारा जार्ज के नेतृत्व में विद्रोह की ज्वाला दहकी। रूस कारा जार्ज की सहायता करता रहा, क्योंकि तुर्की को कमजोर रखना रूस की मुख्य वैदेशिक नीति थी। प्रोफेसर सिपेरो के अनुसार पीटर महान के समय से रूसी वैदेशिक नीति का उद्देश्य कुस्तुनतुनिया था। Constantinople had been the goal of Russian foreign policy since the days of Peter the Great. इस विद्रोह में बेलग्रेड के सूबेदार मुस्तफा पाशा को कत्ल कर दिया गया। साम्राज्य की सेनाएं जो विद्रोह दबाने आई थी उन्हें पराजित कर दिया गया। 1812 तक यह विद्रोह जारी रहा, किंतु अचानक ही सर्ब जाति को रूस की सहायता मिलनी बंद हो गई। रूस ने नेपोलियन के आक्रमण के भय से तुर्की से संधि कर ली, परिणाम स्वरूप विद्रोह को दबा दिया गया। कुछ समय के लिए सर्बिया पर फिर से तुर्की का अधिकार हो गया। 1815 में मिलेस के नेतृत्व में फिर से विद्रोह भड़क उठे। 1816 तक मिलोस तुर्की सरकार से यह मनवाने में सफल हो गया कि सर्बियन लोगों को आंतरिक मामले में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वे भी नागरिक का दर्जा प्राप्त कर सकें। 1820 में मिलोस को सुल्तान ने सर्ब का राजकुमार की उपाधि दी। 1820 में मिलोस को सुल्तान ने सर्ब की राजकुमार की उपाधि दी। मिलोस को रूस की बराबर सहायता मिलती रही और अपने प्रयत्नों व रूस की सहायता के परिणाम स्वरूप 1830 तक सर्बिया पूर्ण स्वतंत्र राज्य बन गया। सर्बिया का शासन मिलोस आब्रिनोची वंश के हाथों में आ गया एवं यहां पर वंशानुक्रम के आधार पर शासन स्थापित किया गया। ग्रीस का विद्रोह। ग्रीसवासी उन्नत थे और नगरों में निवास करते थे। ये लोग अपना जीवन यापन व्यापार के सहारे करते थे। सर्बिया की भांति इनमें भी राष्ट्रीयता की भावना का जोरों पर प्रसार हो रहा था एवं ये भी तुर्की शासन की दासता के जुए से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। यद्यपि तुर्की साम्राज्य ने इन्हें पदलित कर दिया था किंतु ये अपना प्राचीन गौरव नहीं भुला पाए थे। इनके मस्तिष्कों में अभी तक भी यह छाप थी कि प्लूटो एवं अरस्तु के पवित्र भूमि को तुर्की दासता से मुक्त होना ही चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 1815 में ओडिशा में मित्र साम्राज्य नामक की एक गुप्त संस्था का स्थापना किया गया। इस संस्था का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करके तुर्की को यूरोप से बाहर निकालना था। धीरे धीरे यह मित्र साम्राज्य पूरे ग्रीस में फैलने लगा एवं 1821 में मोरिया में ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। स्वतंत्रता का यह युद्ध छिड़ चुका था। ग्रीक वासियों ने तुर्की के किसानों की हत्या करना आरंभ कर दिया। उसके बदले में तुर्कों ने कस्तुंतुनिया के मुख्य पादरी की हत्या कर दी जो ईस्टर मना रहा था। यूरोप के देशों की सहानुभूति ग्रीक वासियों के पक्ष में थी, अतः यूरोप में ग्रीक की सहायता के लिए बहुत सी समितियां बनी। हजारों सेवकों ने ग्रीस आना आरंभ कर दिया। सन 1825 में मिस्र की सहायता से मोरिया के विद्रोह को यूरोप की सरकारें सहायता दे रही थी, अतः इसे पवित्र मित्र संधि के विरुद्ध नहीं माना जा सकता था। ईसाई मत के अनुकूल जब ईसाई व दूसरे धर्मावलंबियों में झगड़ा हो तो गैर ईसाइयों को सहायता नहीं दी जा सकती थी। मैटरनिक कट्टर विचारों का समर्थक था और क्रांतिकारियों को घृणा की दृष्टि से देखता था, किंतु जब ईसाई जगत का प्रश्न आया तो उसने भी ग्रीक वासियों का ही पक्ष लिया। इसी समय निकोलस के स्थान पर अलेक्जेंडर रूस का जार बना। वह पूरी तरह से ग्रीक वासियों का पक्ष ले रहा था। यूरोपीय शक्ति का विचार था कि यदि रूस का प्रभुत्व बाल्कन प्रायद्वीप पर बढ़ जाता है तो उसे भूमध्य सागर में मार्ग मिल जाएगा। इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैनिंग ने भी तुर्की साम्राज्य को कमजोर नहीं होने देना चाहता था। कृपया इसे फिर से सुन लें। इंग्लैंड का विदेश मंत्री कैनिंग भी तुर्की साम्राज्य को कमजोर नहीं होने देना चाहता था। पाशा के मोरिया में किए अत्याचारों के फलस्वरूप ब्रिटेन का हस्तक्षेप आवश्यक माना गया। यह निश्चित किया गया कि रूस एवं इंग्लैंड दोनों मिलकर इस मामले की मध्यस्थता करें। फ्रांस ने इसका स्वागत किया, अतः सन 1826 को रूस फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच लंदन में एक संधि हुई और तय किया गया कि सुल्तान को इस बात पर बाध्य किया जाए कि वह इन तीनों की मध्यस्थता को स्वीकार करें एवं ग्रीस की स्वतंत्रता का स्वागत करें। सुल्तान ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। नेवेरियों का युद्ध निर्णायक साबित हुआ, किंतु अब इंग्लैंड ने पूर्वी प्रश्न से अपना ध्यान हटा लिया, किंतु रूस बराबर आगे बढ़ता रहा एवं 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई जिसके अनुसार ग्रीस की स्वतंत्रता को माना गया। 1832 तक सुल्तान का यह स्वप्न बेसमाप्त कर दिया गया और ग्रीस को पूर्ण स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला। 800 बवेरिया को ग्रीस का राजा बनाया गया। इंग्लैंड का पूर्वी प्रश्न से हट जाना रूस के हक में हुआ। अब रूस का बाल्कन में बहुत प्रभाव हो गया। ग्रीसवासी उसे स्वतंत्रता का दाता मानने लगे। सीरिया विच्छेद। ग्रीस में मिस्र के पासा ने सुल्तान की जो सहायता की थी वह भी स्वार्थपूर्ण थी। युद्ध की समाप्ति पर पासा ने सीरिया की मांग की। सुल्तान ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप 1832 में मिस्र की सेनाओं ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान को कुछ न सूझा, अतः उसने रूस के साथ एक संधि कर ली जिसे उनकियर रस्केलेंसी की संधि के नाम से जाना जाता है। कृपया इस संधि का नाम फिर से सुन लें, उनकियर रस्केलेंसी की संधि। इस संधि के अनुसार युद्धकाल में डार्डेनेल्स के बंदरगाह में सिर्फ रूसी युद्धपोत ही प्रवेश कर सकते थे, अन्य किसी देश के नहीं। इस प्रबंध के अनुसार यदि कभी युद्ध का मौका आता तो रूस के युद्धपोत काले सागर में घुस सकते थे एवं वहां भूमध्य सागर में भी कार्यवाही कर सकते थे। इस संधि से तुर्की साम्राज्य में रूस का प्रभाव बहुत बढ़ गया। अब यह बात ब्रिटेन को असह्य थी, अतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया एवं ब्रिटेन ने आपत्ति की, किंतु इस आपत्ति का रूस पर कोई प्रभाव न पड़ा एवं उसका प्रभुत्व तुर्की साम्राज्य में यथापूर्व बना रहा। इसी समय मिस्र को पासा व सुल्तान में संधि हो गई इसी समय मिस्र के पासा व सुल्तान में संधि हो गई और परिणाम स्वरूप सीरिया पर पासा का अधिकार मान लिया गया, किंतु तुर्की के सुल्तान के दिल में सीरिया के निकल जाने का गहरा धक्का लगा था और वह इसको दूर करना चाहता था। अपने रिश्ते हुए इस घाव को शायद वह भर सके, इस आशा में सुल्तान ने मिस्र के विरुद्ध 1839 में फिर युद्ध की घोषणा कर दी। इस 1839 की घोषणा से यूरोप में खलबली मच गई। इस समय फ्रांस के शासक लुई फिलिप थे एवं प्रधानमंत्री थेयर्स था। फ्रांस ने पासा का पक्ष लिया एवं वह फ्रांस के जनमत को ध्यान में रखते हुए लुई फिलिप के लिए आवश्यक भी था। इसी समय पामस्टर्न, जो इंग्लैंड का विदेश मंत्री था, उसने तुर्कों का पक्ष लिया। इसके दो कारण थे। पहला, यदि तुर्की का समाप्त प्राय राज्य समाप्त हो जाता है तो बालकन में फ्रांस का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, रूस का प्रभाव पहले ही काफी बढ़ गया था, अतः उसे कम करना भी ब्रिटेन की वैदेशिक नीति का मुख्य तत्व था। रूस किसी भी दशा में ब्रिटेन से अपने संबंध खराब करने को तैयार न था, अतः उसने प्रस्ताव रखा कि यूरोप के इस बीमार राष्ट्र का निपटारा इसकी मृत्यु से पहले ही इंग्लैंड एवं रूस मिलकर लेना चाहिए। इंग्लैंड से अच्छे संबंध रखने के लिए जार ने 1833 की संधि को भी अमान्य ठहरा दिया। इस प्रश्न पर ऑस्ट्रिया एवं प्रसाद ने भी रूस का समर्थन किया। अतः चार ताकतों का एक गठन चतुर्मुखी संधि के रूप में सीरिया का प्रश्न हल करने के लिए किया गया। इन शक्तियों ने पासा को यह मानने पर बाध्य किया कि वह सीरिया से अपने अधिकार समाप्त कर दे, किंतु पासा को पूरी आशा थी कि फ्रांस का सरकार उसका साथ देगा, अतः उसने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। इधर जैसा कि हम जानते हैं कि लुई फिलिप ने कोई दृढ़ वैदेशिक नीति नहीं अपनाई थी, अतः अंत में मंजूर होकर पासा को सीरिया से अपना प्रभुत्व समाप्त करना पड़ा। वह मिस्र वालों को जबरदस्ती सीरिया से बाहर निकाल दिया गया। इस 1841 की लंदन की संधि के बाद जल डमरू मध्य की संधि की गई, जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए फ्रांस को भी आमंत्रित किया गया। इस संधि के अनुसार डोडेनल्स तथा बोस के बंदरगाह में किसी भी देश की जंगी जहाज को उतरने की अनुमति नहीं दी गई। इस प्रकार उनकी या रस्केलेंसी की संधि समाप्त हो गई। सीरिया के प्रश्न का निपटारा पामस्टर्न की कूटनीतिज्ञ विजय थी। यदि पामस्टर्न भी वेलिंगटन की नीति पर चला होता तो रूस एवं फ्रांस का तुर्की साम्राज्य में बहुत महत्व बढ़ जाता। अब सीरिया का प्रश्न समाप्त हो गया था एवं ऐसी कोई आशा अब शेष नहीं रही थी जिसके आधार पर यह अनुमान लग सकता है कि पूर्वी प्रश्न निकट भविष्य में जल्दी ही फिर से सर उठाएगा। जार 1844 में ब्रिटेन गया एवं उसने प्रस्ताव रखा कि तुर्की, जो एक बीमार राष्ट्र है और जिसका रोग असाध्य है, यह अच्छा होगा रूस व ब्रिटेन इस बीमार व्यक्ति की इस संपत्ति को आपस में बांट ले, किंतु इंग्लैंड की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। इंग्लैंड के विचार में यद्यपि तुर्की एक बीमार राष्ट्र था किंतु उसका रोग असाध्य नहीं था, अतः जार को निराश होना पड़ा एवं 1854 तक पूर्वी प्रश्न दबा रहा। क्रीमिया का युद्ध, कारण एवं परिणाम। जैसा कि हम देख चुके हैं, पूर्वी प्रश्न बहुत समय से यूरोप के लिए समस्या बना हुआ था। यहां पर मुख्य समस्या यहां के निवासियों की थी, जिसके समाधान के लिए अनेक युद्ध लड़े गए किंतु अभी तक इस युद्ध का समाधान ना हो पाया था। इधर 1850 का यूरोप का वातावरण भी युद्ध का वातावरण बन गया था। आरंभ से ही आभास होने लगा था कि यूरोप की लगभग सभी महान शक्तियां युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति का परीक्षण एवं भाग्य निर्णय अवश्य करेंगी। 1848 के क्रांति के परिणाम स्वरूप नेपोलियन तृतीय सत्ता में आ गया था, जो हर संभव प्रयत्न करके 1815 के कलंक को धोना चाहता था। वह फ्रांस की जनता की मिट्टी शान एवं फ्रांस को यूरोप में फिर से निर्णायक पद पर आसन करना चाहता था। साथ ही बोनापार्ट के समय से फ्रांस एवं रूस के संबंध भी अच्छे न थे, अतः उसका विचार था कि उसे हर अवसर पर रूस की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाना चाहिए। मुख्य बात तो यह थी कि नेपोलियन तृतीय फ्रांस का स्थायी सम्राट बनना चाहता था और पूर्व वंश की भांति बोनापार्ट वंश को फ्रांस का राजवंश बनाना चाहता था। इस कार्य के लिए इसे कैथोलिक जगत की सहानुभूतियां भी प्राप्त करनी थी एवं उनकी सहानुभूतियां प्राप्त करने के लिए वह सब कुछ करने को तत्पर था। उसके सामने तो फ्रांस का सम्राट बनने का स्वप्न था और वह फ्रांस का सम्राट तभी बन सकता था जब फ्रांस की कैथोलिक जनता व यूरोप का संपूर्ण कैथोलिक जगत नेपोलियन का समर्थक हो। रूस का जार भी कम महत्वाकांक्षी व्यक्ति न था। उसने इतना सरोकार फ्रांस से न था जितनी उसकी पूर्व में रुचि थी। वह पूर्व में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाकर भारतवर्ष को अपना लक्ष्य बनाना चाहता था। इसे इंग्लैंड सहन नहीं कर सकता था। इस समय इंग्लैंड में एनरोडिन का मंत्रिमंडल था, जो शक्तिशाली प्रधान न था। इस समय वैदेशिक नीति को लेकर इंग्लैंड का मंत्रिमंडल दो भागों में विभक्त था। प्रधानमंत्री एवं ग्लैडस्टोन युद्ध से घृणा करते थे, जबकि पामस्टर्न तथा रसेल युद्ध एवं रूस दोनों से ही घृणा करते थे। क्रीमिया के युद्ध को लेकर इंग्लैंड में दो वर्ग थे। महारानी विक्टोरिया इस युद्ध को रूस का स्वार्थ एवं निम्न इच्छा की पूर्ति समझती थी, जबकि मंत्रिमंडल इसे नेपोलियन का दुष्कर्म समझता था। 1740 की संधि के अनुसार फ्रांस को जेरूसलम के सभी पवित्र स्थानों की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया था, किंतु लैटिन संतों को उसने हर प्रकार के अधिकारों से उपेक्षित किए जा रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी सर्वोच्चता दिखाने के लिए एवं 1740 की संधि को स्थायी रखने के लिए फ्रांस ने लैटिन संतों का पक्ष लेना आरंभ किया। ऑस्ट्रिया, स्पेन व अन्य कैथोलिक देशों ने फ्रांस का पक्ष लिया। कुछ समय के बाद तुर्की का सुल्तान भी इस बात को मान गया कि लैटिन संतों की सुरक्षा का अधिकार फ्रांस को ही है, किंतु इसी समय रूस ने भी तुर्की पर दबाव डालना आरंभ कर दिया। अतः अब सुल्तान ने दोहरी चाल से कार्य आरंभ किया। वास्तविकता तो यह है कि वह रूस एवं फ्रांस दोनों की ही चापलूसी करके युद्ध को रोकना चाहता था, किंतु इसी समय ब्रिटेन का राजदूत, जो इस समय तुर्की में था, वह युद्ध पर दृढ़ प्रतिज्ञ था। अतः ब्रिटिश राजदूत सुल्तान को भड़काता रहा और अंत में वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया। वास्तविकता तो यह है कि एक ओर तो राजदूत अपना कूटनीतिज्ञ कार्य कर रहा था, दूसरी ओर इंग्लैंड की सरकार को रूस की गतिविधियों का भी पता न चल रहा था। यदि रूस के जार को इस बात का आभास होता है कि इंग्लैंड की सरकार भी इस युद्ध में भाग लेगी, तो संभवतः जार इस युद्ध में भाग न लेता। युद्ध के कारण। लंदन की दूसरी संधि के अनुसार मोहम्मद अली का महत्व राजनीतिक रंगमंच से समाप्त कर दिया गया था। नवयुवक सुल्तान ने जनता को बहुत से सुधार दिए एवं धार्मिक स्वतंत्रता का भी आश्वासन दिया। प्रोटेस्टेंट अपना संरक्षक इंग्लैंड को मानते थे और कैथोलिक फ्रांस को। तीसरा संप्रदाय ऑर्थोडॉक्स था, जो रूस को अपना संरक्षक मानता था। इतिहासकार मैरियट के अनुसार ग्रीक एवं लैटिन संतों का झगड़ा वास्तव में इस युद्ध के कारणों में कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसी ने यूरोप के इतिहास में वह झगड़ा आरंभ किया जिसे क्रीमिया के युद्ध के नाम से जाना जाता है। द क्वारल्स ऑफ द ग्रीक एंड लैटिन सेंट्स वेयर इंडीड नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द मेनी कॉन्ट्रीब्यूटरी काउजेज विच इश्यूड इन द ग्रेट यूरोपियन कॉन्फिगरेशन नोन टू हिस्ट्री एज द क्रीमियन वार। मैरियट। फिलिस्तीन के कैथोलिकों तथा ग्रीस के कट्टर चर्च में झगड़ा चल रहा था। प्रश्न यह था कि फिलिस्तीन के पवित्र स्थानों पर किसी संरक्षकता हो। ग्रीस के कट्टर अपना दावा करते थे एवं फिलिस्तीन के कैथोलिक अपना दावा करते थे। लुई नेपोलियन ने कैथोलिकों का पक्ष लिया एवं घोषणा की कि रोमन कैथोलिकों को बैथलीहम चर्च के सदर दरवाजे की चाबी सौंप दी जाए। रूस ने इस मांग का विरोध किया, किंतु इंग्लैंड ने फ्रांस का समर्थन किया। अतः सुल्तान ने रूस की मांग का विरोध किया, किंतु इंग्लैंड ने फ्रांस का समर्थन किया। अतः सुल्तान ने रूस की मांग को ठुकराते हुए बैथलीहम चर्च के सदर दरवाजे की चाबी कैथोलिकों को दिला दी। इससे रूस बहुत नाराज हुआ एवं युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी। 1853 में रूस की फौजों ने मोल्डेविया व बेलेसिया पर आक्रमण कर दिया एवं अब एक बार फिर से रूस एवं तुर्की युद्धरत हो गए। वास्तव में यह युद्ध एक ऐसा झगड़ा था जिसके पीछे कोई खास कारण न था, किंतु फिर भी यह लड़ा गया। यह युद्ध केवल रूस एवं तुर्की तक ही सीमित नहीं रहा। 1854 में इंग्लैंड एवं फ्रांस भी सुल्तान की ओर से आ गए एवं 1855 में सर्डिनिया ने भी रूस के विरुद्ध अभियान में भाग लिया। जॉर को ऑस्ट्रिया से सहायता मिलने की आशा थी, क्योंकि 1848 में जॉर ने ऑस्ट्रिया की बहुत मदद की थी, किंतु ऑस्ट्रिया ने इसे आड़े समय में तटस्थता की नीति का समर्थन किया। जॉर को बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु इस समय ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था। प्रसाद ने भी इस युद्ध में तटस्थ हो गया। इस झगड़े को वार्ता द्वारा निपटाने के लिए वेनिस में यूरोप के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए, किंतु उन्होंने सफलता ना मिली। रूसी बेरे ने तुर्की बेरे को सिनोए में नष्ट कर दिया। अब ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी बेरे तुर्की की सहायता के लिए आ गए। इधर रूस को भय था कि ऑस्ट्रिया भी उस पर आक्रमण करेगा, अतः पर्थ का मार्ग छोड़ दिया गया। रूसी जहाजी बेरे को सेवास्टापोल में नष्ट कर दिया गया। 1854 में इंग्लैंड एवं फ्रांस की फौजों ने आल्मा की लड़ाई में रूस की फौजों को पराजित किया। इस युद्ध में फौजों को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी। यहां तक कहा जाता है कि क्रीमिया के युद्ध में फौजों ने अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया एवं फौजी अफसरों ने अपने निकम्मेपन का। इस लड़ाई का महत्व केवल यही है कि एक अंग्रेज महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फौजियों के लिए नर्सिंग की व्यवस्था की, जिस व्यवस्था ने बाद में रेड क्रॉस का रूप धारण कर लिया। एबरडीन की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया एवं पामस्टर्न ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। 1855 में निकोलस की मृत्यु पर अलेक्जेंडर द्वितीय जार बना। इसी के समय में 1856 में एक संधि हुई जिसके अनुसार युद्ध बंद कर दिया गया। 1856 की पेरिस संधि। 1856 की संधि पेरिस में हुई थी एवं वियना के बाद यह यूरोप की बहुत बड़ी सभा थी। इस समय फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था, जो 1812 रूस के युद्ध व 1815 की वियना कांग्रेस के कार्यों को नहीं भूल पाया था। इस संधि वार्ता में यूरोप की राजनीतिक दशा पर भी वाद विवाद हुआ। जैसा कि सर्वविदित है कि इस संधि वार्ता में सर्डिनिया के प्रतिनिधि कावूर को बुलाया गया, जिसने रूस के विरुद्ध क्रीमिया के युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। इसी समय इटली के एकीकरण के प्रश्न पर यूरोप का प्रश्न बनाया गया। इस संधि में रूस के ऊपर कुछ शर्तें भी थोपी गई, जो इस प्रकार थी। काले सागर को तटस्थ कर दिया गया। डेन्यूब से व्यापार का रास्ता सब राष्ट्रों के लिए खोल दिया गया। मोल्डेविया व वेनेसिया की स्वतंत्रता को तुर्की सम्राट के आधिपत्य में स्वतंत्र मान लिया गया। तुर्की को यूरोपीय समाज का अंग स्वीकार किया गया। साथ ही अधिकार दिया गया कि किसी भी प्रकार के आयोजनों में तुर्की सम्राट अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। इसके साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि भविष्य में कोई भी यूरोप का देश तुर्की के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस संधि के अनुसार समुद्री किनारे के व्यापार संबंधी संशोधन भी किए गए। भूतकाल में अंग्रेज दुश्मन राष्ट्रों का माल छीन लेते थे, चाहे वह माल किसी तटस्थ देश के जहाज पर ही लदा हो। अब यह समाप्त कर दिया गया। एवं निश्चय किया गया कि भविष्य में यूरोप के देश अपने निजी वाहनों द्वारा भी दुश्मन देश के व्यापार पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस क्रीमिया के युद्ध में लगभग सारा यूरोप जागृत था, किंतु पेरिस की संधि से कोई समस्या सुलझ न सकी। प्रथम बार तुर्की के सुल्तान को यूरोप का सदस्य माना, जिसने पेरिस संधि में अपनी जनता को सुधार देने का वचन दिया एवं सब धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया, किंतु उसकी यह घोषणा मात्र घोषणा ही बन कर रह गई। वह अपनी ईसाई जनता को घृणा के स्थान पर सहानुभूति नहीं दे सका। इस संधि को इतना और हो गया कि यूरोप के राष्ट्र तुर्की के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से भी वंचित कर दिए गए। रूस ने काला सागर की तटस्थता को खुले रूप से निष्कासित किया। इस संधि से इंग्लैंड भी संतुष्ट न था। तुर्की साम्राज्य की जनता को भी बड़ी निराशा हुई एवं अब उन्हें यूरोप से मदद की आशा को छोड़ देना पड़ा। टर्की का विनाश तो कुछ समय के लिए रुक गया, क्योंकि यह संधि हर क्षेत्र में टर्की का समर्थन कर रही थी, किंतु न तो वह अपनी शक्ति ही बढ़ा सका और न ही आंतरिक सुधार कर सका। कुछ ही समय के पश्चात उन्हीं शक्तियों ने, जिन्होंने पेरिस में यह संधि की थी, इस संधि को ठुकरा कर पूर्वी प्रश्न में हस्तक्षेप करना पड़ा। इस प्रकार क्रीमिया का युद्ध ऐसा युद्ध साबित हुआ जिससे किसी को कुछ भी फायदा न मिल सका। परिणाम, क्रीमिया के युद्ध के परिणाम। क्रीमिया के युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, इस युद्ध ने सामुद्रिक शक्ति के महत्व को समझा दिया। दूसरा, इस युद्ध ने प्रेस की शक्ति का आभास जनता के समक्ष लाकर प्रदर्शित किया। जनता को एवं राजनीतिज्ञों को इस बात का पता चल गया कि समाचार पत्रों का महत्व क्या है। तीसरा, इस युद्ध ने प्रथम बार जनता के समक्ष जनमत के महत्व को प्रदर्शित कर दिया। यूरोप की संपूर्ण जनता इस युद्ध के विरोध में थी। इसके साथ ही जनमत का सबसे अधिक प्रभाव इंग्लैंड की सरकार पर पड़ा, क्योंकि अब इंग्लैंड की सरकार को इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पतन का सामना करना पड़ा। चौथा, इसी युद्ध ने यूरोप की आंखों में तुर्की साम्राज्य की महत्ता प्रदर्शित कर दी। अब के बाद तुर्की साम्राज्यवाद यूरोप की महान सत्ताओं का केंद्र बन गया है। इसका आभास भी संसार को हो गया। पांचवा, इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ था कि रूस का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा सेवस्टापोल तबाह हो गया। इसे इंग्लैंड एवं फ्रांस दोनों ही समाप्त करने चाहते थे। इस अड्डे का विनाश इसलिए भी आवश्यक हो गया था क्योंकि रूस भूमध्य सागर के जरिए तबाही मचा सकता था। रूस के भविष्य के झगड़ों को निपटाने के लिए भी यह आवश्यक था। रूस के इस नाविक अड्डे के समाप्त होने पर यह युद्ध भी समाप्त हो गया। इसके साथ ही पूर्वी प्रश्न नामक अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।